Let's take a moment to thank our friends at Sugar Free Green for sponsoring this podcast. In a world where the impacts of sugar consumption on health are being increasingly scrutinized, Sugar Free Green offers a safe alternative. Made from 100% natural stevia leaves, it provides a guilt-free way to sweeten your day. Thank you once again to Sugar Free Green for sponsoring this podcast. Now let's begin the podcast. Namaste Jai Hind, you're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Don't forget to like and subscribe to the channel and share these conversations with people who you think will benefit from listening to them. Today I'm very lucky to be speaking with the Defence Minister of India, Mr. Rajnath Singh. He's been Defence Minister in the second term of the Modi government and Home Minister in the first term. Today during the conversation, not only does he talk about these two portfolios that he held during the Modi government, but he's also spoken about his years when he was jailed in the emergency, the 2 years that he spent in jail and a couple of months in solitary confinement. रक्षा मंत्री जी नमस्कार एएनआई के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद
बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी
तो जो रैलियां हैं वो जोर पकड़ रही है कैंपेन जो है वो पूरे धमाके से स्टार्ट हो गया है आप भी आज तमिलनाडु में थे फिर अरुणाचल में थे विपक्ष जो है वो कह रही है कि जिस तरह बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है अगर वो दोबारा सत्ता में आती है और 400 का नंबर लेके आती है तो संविधान को पूरी तरह बदल देंगे आप क्या कहेंगे
पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी टारगेट तय करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पर ही टारगेट्स तय करते हैं अपने जो ज़मीनी हकीकत रहती है और ज़मीनी हकीकत को हम लोगों ने 2014 में भी अच्छी तरह समझा था और 2019 में भी अच्छी तरह समझने के बाद ही हमने अपने कुछ टारगेट निर्धारित किए थे 2024 के चुनाव में भी यदि 400 पार का यदि हमने टारगेट निर्धारित किया है तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के टारगेट को हम प्राप्त करेंगे नंबर एक दूसरी बात जो आपने कही कि विपक्ष का ये आरोप है कि हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे क्या हम डिक्टेटर हैं अरे डिक्टेटर होते तो कहीं इस प्रकार से कोई बोल सकता है और कोई एक ऐसा वाकया 2014 से लेकर 2024 होने जा रहा है कोई ये बतला दे जिससे उनका यह आरोप सिद्ध होता हो कि कोई अलोकतांत्रिक कदम अथवा कोई तानाशाह जिस प्रकार से कदम उठाया है हम लोगों ने कोई उठाया हो हाँ हम जो भी फैसले करते हैं देश का स्ट्रेचर हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाना था उसके लिए जो भी कठोर से कठोर फैसले लेने पड़े जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं किया उनकी दृढ़ता उनकी संकल्प शक्ति को ही यदि वो मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही तानाशाह है तो सचमुच उनकी इस सोच पर हमको तरस आती है
तो संविधान नहीं बदलेंगे आप
कहां प्रश्न ही खड़ा होता है
क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप क्या हम डिक्टेटर हैं वो तो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और कोई कहने को तैयार नहीं है डर के मारे कोई कह नहीं रहा है लेकिन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है क्या आप मानेंगे
देखो ये लोग तो बोल ही रहे हैं कहां डर है वो तो कह ही रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तानाशाह हैं अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है ये भी बात उनके द्वारा कही जा रही है
आप अभी तमिलनाडु से आए हैं वहाँ पर तो यही आप पर आरोप है आपकी पार्टी पर कि आप मजॉरिटेरियनिज्म है आप कास्ट बेस्ड हैं आप सनातनी हैं आप हिंदू हैं और इसकी वजह से और हिंदी हैं हिंदी हिंदू इम्पोजिशन है तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके आप पर यही आरोप करते हैं
आरोप बेबुनियाद निराधार आरोप है क्या तमिलनाडु के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कदम नहीं उठाए वहाँ काम नहीं किया क्या उसकी चिंता नहीं करते हैं अब एक उदाहरण केवल आपको मैं देना चाहता हूँ बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी जैसे इस देश में दो राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा करनी थी तो नॉर्थ से उत्तर प्रदेश को लिया बिगेस्ट स्टेट तो यह फैसला हुआ कि नहीं साउथ में भी लेना चाहिए तो तमिलनाडु एक बड़ी स्टेट है वहाँ पर भी डिफेंस कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया यदि हिंदी और नॉन हिंदी का भेदभाव करना होता तो हमारी सरकार यह फैसला करती है स्कीम्स जो भी चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैकड़ों स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का ऐसा नहीं है केवल नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उन्हीं में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन्हीं के लिए लागू किया जा रहा है, साउथ की स्टेट्स के लिए नहीं किया जा रहा है। क्या आधार है ये कहने का कि साउथ के साथ ये गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करती है? ये केवल आरोप के लिए आरोप लगाए जाते हैं।
पर जैसे राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो दक्षिण में जा ही नहीं सकती है, आप बंगाल से लेके अब नीचे आइए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा से आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला।
मुझे लगता है कि देश के बारे में उनको सही जानकारी नहीं है। अरे हमारी कर्नाटक में गवर्नमेंट रही है, दो दो बार गवर्नमेंट बना चुके हैं, कैसे कहते हैं कि साउथ में जा ही नहीं सकते? आंध्र प्रदेश था, वहां पर हमारी मिलीजुली सरकार थी TDP के साथ। हाँ, तमिलनाडु में नहीं रही है, अब आगे बनेगी,
आगे तमिलनाडु में BJP की सरकार। आप काफी एम्बिशियस हैं तमिलनाडु के बारे में।
एम्बिशियस नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और आज ही मैं तमिलनाडु से लौटा हूँ
जी,
और जिस प्रकार का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसके लेकर मैं आश्वस्त हूँ।
लेकिन DMK और राहुल गांधी कहते हैं कि BJP को तो घुसने नहीं देंगे तमिलनाडु में।
रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा।
और केरल में
भी हम कुछ सीटों पर इस बार जीतेंगे।
तमिलनाडु में लड़ाई 2024 के लिए ही या 2026 में वहां पर स्टेट विधानसभा के लिए?
नहीं, लड़ाई हमारी 2024 नहीं है, 2024 में भी हम जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, जनता का हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम आश्वस्त भी हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में जीतेंगे, 2026 में भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग गवर्नमेंट बनाएं।
दक्षिण में आपके दो बड़े डायनामिक लीडर्स उभर रहे हैं, एक अन्नमलाई जी हैं और दूसरी माधवी लता हैं जो ओवैसी साहब के खिलाफ हैं। दोनों काफ़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में?
अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि बहुत ही बैलेंस पॉलिटिक्स है।
अच्छा,
हाँ, और ऐसी ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए।
कैसी?
उनकी जो बैलेंस पॉलिटिक्स ऐसी ही होनी चाहिए, काम करना चाहिए। यदि अपोजिशन में है तो जो पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, उन इश्यूज को लेकर ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए ताकि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर बिल्डअप कर सकें कि वह जनता के इंटरेस्ट में फैसले लें।
सनातन के बारे में काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं, जब से DMK ने कुछ बयान किया है, विवादास्पद बयान है, जब वो कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया की तरह उन्होंने कहा सनातन के बारे में, आपका क्या विचार है इसके बारे में?
सनातन या नित्य नूतन चिर पुरातन है, सनातन डेंगू मलेरिया कैसे हो सकता है? सनातन सबके कल्याण की कल्पना करता है, यह तो कभी सनातन कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं।
उनके हिसाब से जब सनातन की बात चलती है तो जाति आ जाती है उसमें।
कहां
तो
जाति आती है?
जाति की राजनीति
आ जाती है। सनातन धर्म आज से है, हजारों हजार वर्ष पहले से सनातन धर्म चला आ रहा है। जाति पंथ का सवाल कहां है इसमें? इसी सनातन धर्म में अनुसूचित वर्ग में जो पैदा हुआ है उसको भी हम ऋषि और महर्षि मानते हैं, उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। जो आजकल का जो तरीका है अगड़ा पिछड़ा और यह सब तय करने का, तो उसके भी चरणों में शीश झुकाते हैं। सनातन कहां जाति के आधार पर भेदभाव कभी किया है?
दक्षिण भारत में कई सारे जो पार्टीज हैं, चाहे लेफ्टिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, DMK हो, वो सब राम मंदिर के बारे में भी कहते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था, इसमें भी जाति देखते हैं वो।
नहीं नहीं, यदि जाति देखनी होती तो हमारी सरकार ने उनका नाम क्यों प्रपोज किया होता, राष्ट्रपति महोदया का? इसके पहले भी हम लोगों ने अनुसूचित वर्ग से ही राष्ट्रपति बनाया था। सचमुच यह कहते हुए मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ हो और उसके बारे में हम जाति और पात के आधार पर बातचीत करें
जी,
जाति पंथ और मजहब के आधार पर हम लोग फैसले नहीं करते, यह उन्हीं लोगों की सोच है, वही लोग करते। देश हित में जो भी उचित लगता है वही फैसले करते हैं हम लोग।
पर राजनाथ जी, जब जब चुनाव करीब आते हैं तो एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, कहते हैं ना कि उसमें कोई मर्यादा नहीं रहती, हर चीज को लांग के
लोग हम लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं. मर्यादा विहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है. और किसी भी सूरत में मर्यादाओं का हम अतिक्रमण नहीं करेंगे.
यही आपकी पार्टी ने कहा था जब लालू जी ने कहा था.
और मैं बतला दूं आपको, हम राजनीति हम लोग करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए पॉलिटिक्स करते हैं.
मर्यादा की जब बात करी तो मैं वो उस बयान पर भी बोलूंगी जब लालू जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद के बारे में वो जानते नहीं हैं, परिवार की खुशी के बारे में नहीं जानते हैं. तो तब आप लोगों ने सबने मोदी का परिवार आपने अपने वो लिया था, ट्विटर पे लगाया था. तो क्या आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं, लालू जी के साथ संसद में आप सब साथ बैठते हैं, तो ये मर्यादा वो क्यों नहीं?
मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है. मोदी जी तो पूरे भारत के लोगों को ही अपने अपना परिवार मानते हैं. हमारे भारत की परंपरा यह रही है प्रारंभ से, हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है.
जब आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में इतने सारे कांग्रेसी शामिल हो गए हैं कि आपकी पार्टी और कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता क्योंकि इतने कांग्रेसी दिखते हैं.
देखिए ऐसा है ना कि जो कांग्रेस में काम कर रहे थे उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी बनी थी अब वैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है. यह कांग्रेस पार्टी अब परिवारवादी पार्टी हो गई है और वह लोग मानने लगे हैं कि इस देश का भला अब इस कांग्रेस पार्टी के रहते नहीं हो पाएगा और इस देश को शिखर तक ले जा सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है. तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है.
लेकिन
दोनों बातें होती हैं.
परिवार पर जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है, क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवार के आगे देख ही नहीं सकती, क्या इस वजह से?
थोड़ी ये कमजोरी तो है, इसे तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा.
लेकिन
चाहे जैसा भी हो नेतृत्व वही परिवार ही करेगा.
लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकता.
तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है. और कांग्रेस के लोगों को समझ में आने लगा है, इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं. उन लोगों ने अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की, नहीं कांग्रेस सुधर पाई तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है.
मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो निकला था जहां पर राहुल गांधी को उनके पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे थे, नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक आप ही हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि आप ही हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ सकते हैं.
लड़ तो रहे हैं
तो, लेकिन आप उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखते राहुल गांधी?
अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
लेकिन हमें तो मतलब हम मतलब जर्नलिस्ट हो या फिर लोगों को तो लगता है कि बीजेपी रोज आरती उतारती होगी उनकी तस्वीर की कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे आप लोगों के लिए तो प्रचार भी वो ही करते हैं.
नहीं, बने रहें लेकिन देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना.
लेकिन होंगे कहाँ से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं.
कहाँ जेल में डाल रहे हैं हम? कहाँ
अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं.
मान लीजिए हमने गलत हमारे कारण वह जेल चले गए तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने, क्या कहना चाहते हैं?
प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए.
ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कभी अभी ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा संभव है?
टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप डरा के रखते हैं ईडी आईटी इनकम टैक्स।
मैं कहता हूं कि ईडी आईबी सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसा कर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है।
राजन जी,
अदालत से राहत मिल रही है
इतने साल तक, मतलब मिलियंस ऑफ केसेस।
यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है?
अरविंद केजरीवाल की,
मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो रही।
कविता जी भी जेल में है,
कविता जी भी जेल में।
तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ?
भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या? न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम।
इसीलिए तो डर के मारे सभी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी में आए तो फिर वॉशिंग मशीन, यही तो सब कह रहे हैं।
कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, एजेंसी को जो अपना काम करना है एजेंसी अपना काम करेंगे।
पर जो एजेंसीज जो काम कर रही है वो आपके निर्देश पर काम कर रही है, यही कह रहे हैं सब विपक्षी।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो?
वही तो कह रहे हैं सब,
ये बेबुनियाद निराधार आरोप है। वो अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं। और कोई ये गुमराह करके सोचेगा कि हम भ्रष्टाचार के आरोप से बच जाएंगे, यह संभव नहीं है
जी। जब इतने सारी पार्टियों से लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, इट्स लाइक अ बिग टेंट, आपके बीजेपी एक टेंट की तरह है, जब सब लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं और सबको पद मिल रहे हैं या टिकट मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है आपकी पार्टी में,
सभी को नहीं,
चलिए ज़्यादातर लोगों को। तो अब जो इतने सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं जो निष्काम सेवा कर रहे हैं, जब उन्हें कोई पद नहीं मिलता, उन्हें टिकट नहीं मिलता, और जो बाहर से आते हैं माइग्रेंट, उनको जब
पहले ही मैंने कहा ना कि हम लोग जब राजनीति में आए थे, राजनीति क्या, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब स्वयंसेवक बने थे ना, कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को एमएलए बनना है, हम लोगों को एमपी बनना। राष्ट्र निर्माण का यही पाठ हम लोगों को पढ़ाया गया था, और इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, और फिर उसके बाद राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हम लोग। कभी सोचा ही नहीं था, जो होना होगा होगा।
आपका जो डिसिप्लिन, आपके
हम राजनीति में आए हैं तो हमको पद नहीं मिलेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति देश के लिए कुछ नहीं कर सकता।
बट राजनाथ जी, आपकी जो आरएसएस वाली ट्रेनिंग है, या आप जो सालों साल आपने काम किया बिना किसी पद के, ऐसी ट्रेनिंग जो नए रिक्रूट्स जो आते हैं बाकी पार्टियों से, उनका डिसिप्लिन तो है नहीं ना ये सब करने का?
नहीं,
वो कैसे बन जाते हैं आप, वो इस ढांचे में कैसे बन जाते हैं?
हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे दल में सब सारे लोग हैं
जी,
जब देखते हैं कि देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा है तो उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। समाज कल्याण के लिए इतने सारे काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इसको देखकर वो गौरवान्वित होते हैं। जब पार्टी की सराहना समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जब वो सुनते हैं तो उनको बेहद खुशी होती है।
पर जैसे नीतीश बाबू है, अंत्योदय के कारण तो नहीं आए ना, आपके अंत्योदय कारण गए, वो तो दल बदल बदल के फिर बार बार आते हैं आपके, आपने कहा कि दरवाजा बंद है फिर भी वो आ जाते हैं आपकी
पार्टी। आए ना, मतलब आप कहेंगे उधर गए फिर उधर से इधर आ गए, यही आरोप है आपका ना
जी।
लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात आप भूल जाते हैं, कहीं भी रहे वो, लेकिन कभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमारे साथ यदि आता है तो स्वाभाविक रूप है हमको प्रसन्नता होगी।
राजनाथ जी, ठीक है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, पर वो इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे और बिहार का हाल देखिए, आप उन पर इल्जाम नहीं लगाएंगे कि हालत देखिए आपके राज्य का?
अब देखिएगा, बिहार के हालात बदलेंगे, बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा,
ये वायदा है आपका?
बिल्कुल वादा है। क्योंकि जब तक देश के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत के समग्र विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती।
क्या यही कारण है कि जो आपने जो गोल रखा है 400 पार, इसमें आप सबको लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के लोग आप में शामिल हो जाए? क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको जरूरत नहीं है इतने लोगों को लाने
की। जरूरत की बात है, कोई आना चाहता है, परिवार में शामिल होना चाहता है, तो हमको क्यों आपत्ति होगी?
आपकी मैसेजिंग डाइल्यूट नहीं होगी राजनाथ जी?
कोई मैसेजिंग हमारी डाइल्यूट नहीं हो रही है। हम तो एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, हम कुछ कार्यक्रमों के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत को हमको विकसित भारत बनाना है, तो हमें आपत्ति क्यों होगी? जितने लोग आना चाहते हैं आए, सबका स्वागत है।
और उसमें आइडियोलॉजी वगैरह कोई बाधा नहीं है?
नहीं, पार्टी की जो रीत नीत जो विचारधारा है इन सब सारी चीजों को समझने के बाद ही जो सीनियर लोग आते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, इन सब सारी चीजों को सोच समझ कर ही तो आते हैं।
जब आप, मैं फिर से दक्षिण भारत की ओर मुड़ना चाहूँगी, आप अभी वहीं से आए हैं, जब दक्षिण भारत में जब केरला तमिलनाडु यहाँ पर इक्का दुक्का सीट ही आएंगे इस बार, अगर
इक्का दुक्का नहीं
ज्यादा,
हाँ ठीक ठाक आएंगे
दक्षिण भारत में,
दक्षिण भारत में
अगर दक्षिण भारत जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज है,
कर्नाटक में तो स्वीप ही करेंगे,
कर्नाटक में
स्वीप करेंगे, लक्ष्य यही है।
अच्छा
ठीक है, एक आक्षीर का हो सकता है इधर उधर, लेकिन स्वीप करेंगे।
कर्नाटक में इतने सारे आपके लीडर्स एक दूसरे से इतना लड़ते मरते हैं, कहां से आपके नंबर आएंगे इस बार?
देखिए, लीडर्स एक दो इधर उधर करते होंगे वो अलग की बात है, लेकिन देश इस समय देखना चाहता है, देशवासी ये देखना चाहते हैं कि देश को शिखर तक कौन ले जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद कौन बड़ा कर रहा है और कौन और बड़ा कर पाएगा, इसको देखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नज़र मोदी जी पर जाती है, एक बहुत बड़ा आकर्षण तो ये भी है।
कितने
जनता और हमारे साथ आ रही है
आपकी पार्टी को, कितने और इलेक्शन में मोदी जी के नाम पर?
हाँ मोदी जी जा रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं, मोदी जी रहेंगे, हैं रहेंगे, ये तो तीसरा टर्म है, चौथे टर्म में भी रहेंगे।
तो मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी 4, मोदी 5,
कोई हरी नहीं, जब तक सामर्थ्य है तब तक रहेंगे, जब तक देश चाहेगा तब तक रहेंगे।
मैं राम मंदिर के बारे में बात कर रही थी उस वक्त जब दक्षिण भारत की बात हो रही थी, फिर से उस पर लौट आऊँगी, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसको ऐसे टाइमिंग पर किया गया है प्राण प्रतिष्ठा, कि 2024 के इलेक्शन के आसपास ही हो। और अब आप अगर आप देखें, हर पॉलिटिकल रैली में यही बात उठती है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया था, वो नहीं आए,
नहीं आए।
तो इस बात को पॉलिटिकल रैलीज में कहने की क्या जरूरत है?
अरे भाई, ये लोग आलोचना करते हैं कि हमको बुलाया नहीं गया, ये कहते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, जनता की आंखों में वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब देना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है? हम जनता को बतला रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, इनको भी आमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए,
पर इसको पॉलिटिकल इशू बनाने का जिम्मा किसका था?
हम कहा पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है,
कांग्रेस बना रही है। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारा प्रारंभ से था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए।
आप मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो आपने देखा ही होगा, बीजेपी के सभी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ऐसे लग रहा है जैसे कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटी अपीजमेंट है उसमें, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट तो ये कांग्रेस और या इंडी के जितने भी अलायंस हैं पहले से ही करते चले आ रहे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी का अपीजमेंट नहीं करती है, जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसी इरादे से हम लोग काम करते हैं, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं।
मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है जो सभी विदेशी अखबार कह रहे हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म है, जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में आप ध्यान नहीं देते?
हो सकता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत के कारण कुछ लोग ऐसे जेलस हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ कुछ बोल रही है।
G20 के दौरान आप मिले भी थे बहुत से लोगों को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्या किसी ने ये कहा कि हम भारत में जो डेमोक्रेसी है वो स्लाइड कर रहा है, वो नीचे गिर रहा है, स्तर नीचे गिर रहा है?
G20 के दौरान जिन भी लोगों से हम मिले थे
जी,
सबने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, इसकी लोगों ने प्रशंसा की। और उस प्रशंसा सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब उन लोगों की भी यह धारणा बन रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में भारत का स्टेचर बढ़ा है।
रक्षा मंत्री जी, आप मैं एक और सवाल पूछूंगी मैनिफेस्टो पर, उसके बाद जाऊंगी। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना करवाएंगे, ये घोषणा की है, क्या इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिल सकता है उन्हें?
अब उनको इसका पॉलिटिकल फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, इसलिए वो बात कर रहे हैं। इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा
जी। चलिए मैं थोड़ा सा,
लेकिन उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के संबंध में यही कहूँगा
जी
कि उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरी तरह से प्रतिगामी है, और हमारा जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो वह प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है।
अच्छा, ओके।
जो आएगा, जो आने वाला है,
आने वाला है। जी, रक्षा मंत्री जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, और राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर स्कीम जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा।
वो जानते हैं उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए इस प्रकार के वादे कर रहे हैं। अग्निवीर को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? 18 साल की उम्र में हम नौजवानों का सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद उनके हर प्रकार की एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंडर डेवलप की जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल जानकारी भी उनको दी जाती है, और 4 साल के बाद यदि पूरी तरह से वेल स्किल्ड होकर जो वह निकलेंगे और उनको उनके हाथ में सर्टिफिकेट होगी, और हाई स्कूल जब पास करते हैं तब वो अग्निवीर में शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट के भी उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होगी, जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास 14-15 लाख 15.5 लाख की धनराशि भी उनके हाथों में होगी। तो जो भी करना चाहेंगे करेंगे, उसमें 25% लोग रहेंगे वहाँ पर।
वो
और दूसरी चीज
जी,
जैसे जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें ऐसे अपने अग्निवीर जवानों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है, केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं बल्कि अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने भी कहा कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे, यदि कोई काम करना चाहता है, कोई अपना रोजगार करना चाहता है, एक छोटी मोटी 14-15 लाख की धनराशि उसके हाथ में होगी, कुछ करना चाहता है तो कर भी सकता है, और इंटरमीडिएट पास की सर्टिफिकेट भी उसको प्राप्त हो जाएगी, आगे पढ़ाई करना चाहता है पढ़ाई भी कर सकता है, इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? भाई 18 साल की उम्र में वो भर्ती होगा, 4 साल के बाद यदि वहाँ से निकलता भी है तो 22 साल की उम्र तो रहेगी ना, इसके बाद तो IAS ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपटीशन में भी बैठ सकता है, किसी भी कंपटीशन में बैठ सकता है।
पर वो
लेकिन यह तो देश के यह तो सचमुच जवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, हमारा ये कहना कि एक स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है, लगेगा कहीं पर कुछ और कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है।
क्या 3 महीने की ट्रेनिंग काफी है?
लेकिन मैं कहना चाहता हूं नौजवानों का भविष्य कभी भी अंधकार में हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग ऐसे नहीं है।
वो कह रहे हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है, क्योंकि चीन में जो उसी उम्र के लड़के हैं जो सोल्जर्स बन रहे हैं उनकी 1-1.5 साल की ट्रेनिंग है, तो हमारे जब सैनिक
कहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ भी 8-9 महीने की ट्रेनिंग है।
तो जब वो LAC पर जाएंगे तो ना तो उनकी ट्रेनिंग काफ़ी है जितनी चीनी सोल्जर,
LAC पर जाने के लिए जितनी ट्रेनिंग चाहिए उतनी ट्रेनिंग दी जाएगी,
और उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे बाकी सोल्जर्स को मिलते हैं,
जो भी सारे बेनिफिट्स वगैरह सबकी व्यवस्था है, क्या बेनिफिट मिलेगा? कितना मिलेगा।
तो आप कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं
पूरी तरह से हमारे जवानों को, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इन लोगों ने इस देश के जवानों के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी हम जवानों को दे रहे हैं तो उसको लेकर भी गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए।
और ये सेना का
जो मुद्दा हो ही ना उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
सेना को पॉलिटिसाइजेशन का जो इल्ज़ाम लगाती है आपकी पार्टी, क्या ये जस्टिफाइड है कि कांग्रेस जो है कि सेना को भी घसीट रही है पॉलिटिक्स में?
नहीं, सेना को हमारे कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर पाएगा, उनके बस का नहीं है कि इसका राजनीतिकरण कर ले। हमारे देश की सेना इस होने वाली भी नहीं है, हमें अपने देश की सेना पर सचमुच गर्व है। जिस तरीके से सीमा पर यदि किसी प्रकार के हालात पैदा होते हैं और जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवान देते हैं उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हम सबको अपनी सेना पर नाज है, गौरव है।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूछना चाहती थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है और उसके बाद क्या आप समझते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डिसीजन था आपका और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, क्या ये धब्बा है आपके
पार्टी का? क्यों धब्बा है?
क्योंकि उन्होंने कहा क्विड प्रो क्वो हुआ है, जिस जो उद्योगपति हैं जिन्होंने जिनके ऊपर कोई केस था उन्होंने आपकी पार्टी को डोनेशन दिया, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जहां पे वो प्रॉफिट्स बना ही नहीं रहे हैं और इतनी धनराशि आपकी पार्टी को डोनेट करते हैं वो, तो क्या इससे सवालिया निशानी
होता? सुप्रीम कोर्ट ने दी कॉग्निजेंस लिया है तो सुप्रीम कोर्ट देखे, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देना चाहता है वो दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम लोगों को स्वीकार है, हम कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कभी कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे, नाम डिस्क्लोज किए जाए तो हो सकता है कल वो भी समय आ जाए कि लोग ये भी कहें कौन किस पार्टी को वोट देता है, ये भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए।
मांग तो रहे हैं कि वीवीपैट होना चाहिए,
लेकिन समय आएगा तब इस इलेक्शन बॉन्ड का मैं समझता हूँ कि क्या लाभ है इससे, इस ये लोगों के समझ में आ जाएगा
तो सुधार हो सकता है, उसकी गुंजाइश है।
नहीं, हम उसके सुधार के बारे में नहीं कह रहे
जी।
हम लोगों ने जो फैसला किया था वो सोच समझ कर फैसला किया था, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको लेकर हमको ग्लानि नहीं है।
हमारे कुछ दर्शक हैं वो विदेश में रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहूँगी इस बारे में, शायद वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा ना जानते हों, खासकर यंग जनरेशन जो यूथ हैं NRIs। जैसे मोदी कैबिनेट में आप 2014 से 19 तक आप गृह मंत्री थे, 19 से 24 तक रक्षा मंत्री थे, इन दोनों टेन्योर्स में कोई ऐसे असाइनमेंट जो आपको बहुत अधिक आपको आप संतुष्ट थे उस डिसीजन को लेकर या उस एक्शन को लेकर, और कोई ऐसी घटना जिसे आप बिल्कुल ही हिल गए थे और यू नो इट जस्ट अफेक्टेड यू इमोशनली इन दोनों टेन्योर्स में?
जब उरी की घटना हुई थी थोड़ा सा मुझे वेदना भी थोड़ा क्या मैंने वेदना भी हुई थी और साथ ही साथ आक्रोश भी पैदा हुआ था। पुलवामा की घटना के बाद भी आक्रोश पैदा हुआ था और जिन जवानों ने शहादत दी थी हमारे, स्वाभाविक है उनके प्रति एक जिस प्रकार का भाव होना चाहिए किसी भी संवेदनशील प्राणी के अंदर, उस प्रकार का भाव भी मेरे अंदर था। नहीं तो और किसी बात को लेकर मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका निभाता रहा है, मैं जिस प्रकार की अपीजमेंट पॉलिसी करता रहा है जो कि मैं मानता हूं कि वह राष्ट्रहित में नहीं है, उसको देखकर कभी कभी मन को लगता है कि इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं की जानी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए, पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो जस्टिस और ह्यूमैनिटी की, न्याय और मानवता की जानी चाहिए, कास्ट क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
आपने पुलवामा का जिक्र किया, गलवान भी आपके व्हेन यू वर मिनिस्टर तब भी हुआ था, जब गलवान का किस्सा हुआ, जब आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको ये बताया गया कि क्या हुआ है और उस वक्त आपके मन में क्या सेंटिमेंट था?
मेरे मन में आक्रोश पैदा हुआ था उस समय। मैं दिल्ली में ही था, तुरंत मैं गया था और उस समय उनके जो शव थे मैंने अपने कंधों पर उठाया था गृहमंत्री रहते हुए। अब उस समय की वेदना को मैं शब्दों में यहां व्यक्त नहीं कर सकता।
आप परिवार वालों से भी मिले थे उस वक्त?
हाँ, परिवार वालों से, यहाँ भी आए थे लोग, यहाँ भी मिले थे
जी।
वहाँ तो परिवार वाले नहीं थे बहुत,
यहाँ पे हाँ
इन्हें गिने लोग थे, लेकिन यहाँ पर मिले थे परिवार वालों से।
और उस वक्त मंत्री के तौर पर आप उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं कि कुछ करना चाहिए, इमीडिएटली प्रतिक्रिया होनी चाहिए या फिर सोच समझ कर जब समय सही हो तभी एक्शन लेना चाहिए, कैसे होता है वो?
जो होना चाहिए था उस समय हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो होना चाहिए था वो हुआ।
जब आप गृह मंत्री थे चीन ने डोकलाम का वो किस्सा हुआ था, ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध के कगार पर हम आ गए थे, उस वक्त की बात बताइए।
देखिए, यदि कहीं पर हमारा कोई पड़ोसी देश युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो स्वाभाविक है हमारे लिए उसके मुकाबले की तैयारी करना, उस समय हम लोगों ने तैयारी की थी। लेकिन चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं
जी। पर आपने ये भी कहा था कि
क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसा अटल जी कहा करते थे कि हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते
जी। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने हमारी ज़मीन का कोई हिस्सा लिया। क्या हमारी ज़मीन का कोई हिस्सा गया है चीन को?
ऐसा मैं नहीं मानता
जी,
ऐसा नहीं मानता। हाँ, इस समय दोनों चाइना और भारत के बीच में कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है
जी।
कुछ इशूज हैं, कुछ इशूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है और वो ठीक तरीके से भी बातचीत चल रही है, बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बातचीत के द्वारा इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा।
तो समाधान कब तक और बातचीत कितने और दौर?
देखिए, जब बातचीत चलती है दो देशों के बीच तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके परिणाम आएंगे
जी।
लेकिन इसी विश्वास के साथ बातचीत वो भी कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं कि इसका समाधान निकलेगा।
ट्रस्ट डेफिसिट कितना है इन द सेंस कि क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? एक होता है ट्रस्ट वेरीफाई, ट्रस्ट एंड वेरीफाई वाली बात होती है, क्या हम कभी भी चीन पर विश्वास कर सकते हैं?
जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है
जी,
यदि उस पर वह सहमत होते हैं तो मैं समझता हूँ फिर तो अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में कहा था कि गृह मंत्री के रूप में पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद पर अंकुश लगाना जो आपने किया था वो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप आज अरुणाचल से आए हैं तो कैसे लगा आपको उस वक्त?
देखिए, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद तो लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ हमारे समय काम हुआ था, कुछ हमारे सहयोगी अमित शाह जी जो गृहमंत्री इस समय हैं
जी,
उन्होंने भी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया है और प्रयत्न किया है और कई जो वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उग्रवादी ग्रुप थे, उनके साथ समझौते भी हुए हैं। तब नॉर्थ ईस्ट की स्थिति मैं समझता हूँ पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है।
लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अपनी तरफ की ज़मीन पर मॉडल गांव निर्माण किया है उन्होंने और LAC के कुछ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने नए सुरक्षा चौकियां भी बनाई हैं तो और अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव को भी उन्होंने रीनेम कर दिया है उस इलाके में, तो भारत इसको अब मुकाबला कैसे कर सकती है, क्या करेगी भी?
देखिए, LAC के उस पार जो उनकी ज़मीन है उस पर वह कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अथवा कोई चौकी बनाते हैं तो इस संबंध में मैं क्या करूँगा? LAC की इस पार वह करें, LAC के इस पार हम करें, लेकिन हम लोग भी तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, अन्य सारी दूसरी एजेंसीज ने भी बॉर्डर के समीप काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम लोगों ने भी किया है, मैं इसको स्वीकार करूँगा, उन्होंने किया है, हमने भी किया है, लेकिन डेवलप करें वह सीमा के उस पार, हम सीमा के इस पार, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति भी कायम रहनी चाहिए, इसका भी प्रयत्न दोनों देशों की तरफ से होना चाहिए।
रक्षा मंत्री जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि जो चीन का मुद्दा है उसके लिए जो राष्ट्र सुरक्षा की जो हमारी नीति है, बीजेपी की जो नीति है, वो छाती पीटने वाली एग्जैजरेटेड क्लेम्स है, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम स्टेटस को बहाल करेंगे, जहां पर हमारी सेनाएं पहले पेट्रोल करती थी और अब नहीं कर पा रही हैं वो कर पाएंगे।
कांग्रेस के लोग कहते हैं
जी,
मैंने कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन चली गई है उसको सब उनसे चाइना से ले लेंगे, उसको बहाल करेंगे,
कह तो रहे हैं।
इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और कांग्रेस की हुकूमत के द्वारा यह संभव है। देखिए, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी हुकूमत के समय क्या हुआ था, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चीन के कब्जे में गई है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और एक इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे।
वो तो विश्वास नहीं करते हैं आपके बातों पर, लेकिन चलिए मैं डिफेंस इंपोर्ट्स के मामले में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तरफ हम ट्रेडिशनली रूस से इंपोर्ट्स करते आए हैं, अब हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करने लग गए हैं, तो क्या ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं हम दोनों सुपर पावर्स के बीच?
अभी तक तो यह संतुलन बना हुआ है, बैलेंस अभी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है
जी। और एक्सपोर्ट्स के मामले में आपने बयान दिया था डिफेंस एक्सपोर्ट्स।
देखिए, हम लोगों की जो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की नहीं है बल्कि मल्टी अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी, तो हम किसी के साथ अपने रिश्ते बनाकर रख सकते हैं। हमारे रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं
जी। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में अभी आपने अभी बयान दिया था, रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए हैं।
हाँ, 21,000 करोड़ से अधिक का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है
जी,
डिफेंस का,
जो टारगेट से कई गुना अधिक।
हाँ, टारगेट से अधिक है कि टारगेट तो हमारा और अधिक है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि उस टारगेट को भी अचीव करेंगे
जी।
हम तो अपना एक्सपोर्ट 28-29 तक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट।
कब तक?
28-29
तक जी। भारतीय नौसेना जो है इंडियन ओशन रीजन में कड़ी निगरानी रखती है, जी, और चीन के जहाज भी उस इलाके में उन्होंने अपनी पैरवी ज्यादा कर ली है, तो इस संदर्भ में कुछ बताएंगे कि क्या हम आर वी गोइंग टू बाय मोर शिप्स सबमरीन्स, क्या हम निगरानी और बढ़ाने वाले हैं उस इलाके में, क्योंकि चीन का इंटरेस्ट जो है वहाँ पे और बढ़ गया है।
देखिए, इंडियन नेवी का जो रोल है वह रोल अपना इंडियन नेवी प्ले कर रही है, यदि कोई परिस्थितियाँ विशेष ऐसी पैदा होंगी तो उस समय जो फैसले करने होंगे हम फैसले करेंगे
जी। मैं चीन से अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ती हूँ। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी?
मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है,
लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए।
और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें उसे समाप्त करें या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें, क्यों नहीं समाप्त हो सकता? लेकिन ये उनकी मर्जी पर है, मैं एक सुझाव दे रहा हूं उनको।
लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर आप आपने तो कहा कि हम घुस के मारेंगे।
देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाज़त हम नहीं देंगे भारत सीमा के अंदर, या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे,
और सीमा पार भी।
अब चलिए देखेंगे क्या होगा,
क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह सब यही कह रहे हैं कि जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और मस्कुलर डिफेंस पॉलिसी, मतलब अग्रेसिवनेस जो है बीजेपी में, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और भी अग्रेसिव होते जा रहे हैं आपके सबके बयान।
मैं समझता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट हो मोदी जी की लीडरशिप की, हम लोगों का कभी भी कोई रोल एग्रेसिव नहीं रहा है, कोई भूमिका एग्रेसिव नहीं रही है। हम लोगों की भूमिका जब भी रही है, जिस भी मुद्दे को लेकर रही है, पूरी तरह से बैलेंस रही है, संतुलित रही है।
जी, एक तरफ वासुदेव कुटुंबकम जैसे आपने कहा था G20 के दौरान, और दूसरी तरफ विश्व गुरु भी, तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती?
क्यों, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंब द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरा विश्व है, हमारा परिवार है, हम परिवार मानते हैं।
और विश्व गुरु, तो फिर वो मस्कुलर वाली बात आ गई।
ज्ञान विज्ञान के मामले में भारत पहले जिस ऊंचाई पर था, भारत को हम उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। विश्व गुरु का यह मतलब यह होता है कि केवल अपना कल्याण करना यह नहीं मतलब होता है, बल्कि हमारे पास जो भी ज्ञान और विज्ञान है उससे सारा विश्व लाभान्वित हो, जिस विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, उद्देश्य यही होता है।
एक और बात जो अब रह गई है वो है POK की बात, वो भी आपके एजेंडा में है भारतीय जनता पार्टी में?
एजेंडा वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि POK में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। यह उनकी ख्वाहिश होगी, यह उनकी इच्छा होगी, यह उनकी मुराद होगी, तो भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो POK हमारा था, है, और POK हमारा रहेगा।
आप रक्षा मंत्री भी थे हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और कश्मीर में आपने दौर देखा है, एक पुराना दौर देखा है और आज का
बहुत खराब दौर था, जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय मैं जाता था, बहुत सारे गृहमंत्री के रूप में भी लोगों से, क्योंकि उस समय सरकार थी मिलीजुली PDP के साथ, लोगों से भी बहुत कोशिश की गई बातचीत करने की, ताकि ये सब सारी गतिविधियां बंद हों, अलगाववाद का रास्ता लोग छोड़ें, लेकिन उस समय बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धारा 370 समाप्त होते ही बात समझ में आ गई।
और उससे पहले का भी एक दौर था।
और फिर इस समय कश्मीर अपने विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, लोग ये महसूस करते हैं, वहाँ पर शांति है, अमन अमान का माहौल है।
और एक आप अटल जी के कैबिनेट में भी थे, उस वक्त का दौर भी था कश्मीर का, जब कारगिल युद्ध भी हुआ था, तब भी आप कैबिनेट में थे, आपने वो दौर भी देखा है कश्मीर का?
देखा है।
उस वक्त का कुछ बताइए हमें।
उस समय मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले थोड़े समय के लिए मैं आया था सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में, नेशनल पॉलिटिक्स में बस हमारी एंट्री ही हुई थी, आप ये मान लीजिए उस समय, तो बहुत ज़्यादा कश्मीर को देखने समझने का उस समय हमको अवसर नहीं मिला था, बस सुनी सुनाई बात, तो सुनी सुनाई बात की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ,
पर आप,
कोई औचित्य नहीं।
आप उस वक्त अडवाणी जी के साथ
भी चाहते थे वहाँ की स्थिति सामान्य हो, बहाल हो, लेकिन उस समय भी अलगाववादी ताकतें अपना काम कर रही थी, और उन्होंने बराबर लोगों के साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश की, बातचीत किया भी।
पर राजनाथ जी, मैंने खुद देखा हुआ है, आप अडवाणी जी के घर हुआ करते थे, और उस वक्त अरुण शौरी जी भी थे, आप बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, मैं बाहर खड़ी थी, पर मुझे पता था कि आप लोग सब कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, वो भी आपसे सलाह मशवरा करते थे उस वक्त, अडवाणी जी आपसे बात करते थे, वो उस टाइम
डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय की बात कर रहे हैं जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया था, तब की बात आप कर रहे हैं।
हाँ जी,
उसमें बात करते थे, कश्मीर की स्थिति को लेकर तो हम लोग चिंतित थे ही, लेकिन हम लोगों की सरकार उस समय नहीं थी, जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट बना था तो हमारी सरकार यहाँ केंद्र में नहीं थी, तो उसमें हम लोग चर्चा करते थे, ये बात सही है।
और जब आप पार्टी प्रेसिडेंट भी थे तब भी, और आपके आपका जो यात्रा भी आपने एक निकाली थी, सुराज्य क्या था वो,
सुराज्य
सुरक्षा यात्रा,
नहीं, वो सुरक्षा यात्रा,
सुरक्षा यात्रा आपने, हाँ मैंने वो कवर किया था,
निकाली थी आधे भारत में अडवाणी जी ने,
अडवाणी जी ने उस वक्त भी, आई रिमेम्बर दैट नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे मीडिया के लोग आके आपसे बात करते थे,
करते थे
उस वक्त भी, आपने कश्मीर के बारे में भी आप बात करते थे कि हाँ इंटेग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, उसके बारे में भी आप बात, और डी रेडिकलाइजेशन की जब बात होती थी उस वक्त भी आप बात करते थे, क्योंकि उस वक्त हुजी वगैरह सिमी हुजी वो उस टाइम हावी थे नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर, वो थे उस वक्त। तो उस वक्त डिड यू रियली थिंक कि एक दिन आएगा ऐसे जब मैं रक्षा मंत्री बनूंगा और या फिर होम मिनिस्टर बनूंगा,
मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये लगता था कि हालात जितनी तेज़ी के साथ कश्मीर के, सारे देश के जितनी तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं, इस कांग्रेस को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को आना है, ऐसा लगता था। और मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा विश्वास भी मन के अंदर पैदा होता था, लेकिन वो समय आ गया 2014 में, मोदी जी के नेतृत्व में क्लियर मेजॉरिटी के साथ पहली बार भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट बन गई, और भाजपा को तो क्लियर मेजॉरिटी उसी समय मिल गई 2014 में।
और अब आप इलेक्शन फिर लड़ रहे हैं,
लड़ रहे हैं
अब पहले ही बार की तरह, कि आप कैंपेन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी करते नहीं हैं, आप वैसे ही जीत जाते हैं बिना कैंपेनिंग के।
संसदीय क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास प्राप्त है, पूरा विश्वास प्राप्त है
कि आप जीत जाएंगे।
नहीं, उनका विश्वास मुझे प्राप्त
जी, और उनकी उम्मीद क्या है आपसे, क्या चाहते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
क्या चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है, लखनऊ में बहुत लंबे समय से मैं रह रहा हूँ, और जनता यही चाहती है कि हमारा विकास होना चाहिए। अब इसके बारे में आप लखनऊ की जनता से पूछ लीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उम्मीद है कि नहीं है आगे कि और भी विकास होगा। तो अब अपने मुँह से मैं ये कहूँ कि ना विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, ये कहना उचित नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि आप अपनी एजेंसी को भेजिए कि जाकर लोगों से बातचीत करें।
राणा जी, मैं अब उस आई वॉन्ट गो टू दैट पीरियड इन योर लाइफ, दिल्ली आने से पहले वाली बात, जब आप के जीवन का उस वो पहलू, जब आप उत्तर प्रदेश में थे, भारी अस्थिरता के वक्त जब आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए।
जिस समय मुख्यमंत्री मैं बनकर गया था, वो विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम वर्ष था, और बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण यह वर्ष था उत्तर प्रदेश के लिए। उतने अल्प समय में जो भी मैं कर सकता था अपनी तरफ से करने की कोशिश की, और दूसरी चीज़ क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, वो गवर्नमेंट जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलायंस से वो गवर्नमेंट बनी थी, मिलीजुली सरकार थी। तो आप जानती हैं मिलीजुली सरकार को चलाना कठिन होता है, लेकिन बखूबी सरकार को चलाने की हमने कोशिश की, कामयाबी मिली, कहाँ तक मिली नहीं मिली इसका मूल्यांकन मैं क्या करूं, इसका मूल्यांकन तो उत्तर प्रदेश के लोग ही करेंगे।
मैं इसलिए कह रही हूं राजा जी, क्योंकि कुछ जैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने इंस्टेबिलिटी उत्तर प्रदेश में देखी नहीं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो स्टेबिलिटी वाले दौर में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं फॉर आर व्यूअर्स आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक अ लिटिल बिट, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द 1970s। आप तो जानते ही, आप वाकिफ हैं, चरण सिंह चीफ मिनिस्टर 225 डेज, देन प्रेजिडेंट्स रूल 17 डेज, त्रिभुवन नारायण सिंह 168 डेज, कमलापति त्रिपाठी 2 years 70 डेज, द tenure is 5 years बट नन ऑफ देम, नारायण दत्त तिवारी 1 year 99 डेज, प्रेजिडेंट्स रूल 148 डेज, हेमवती नंदन बहुगुणा 2 years 22 डेज, प्रेजिडेंट्स रूल 52 डेज, नारायण दत्त तिवारी अगेन 1 year 99 डेज, अगेन प्रेजिडेंट्स रूल, राम नरेश यादव 1 year 250 डेज, बनारसी दास 355 डेज, प्रेजिडेंट्स रूल 113 डेज, वीपी सिंह 2 years 40 डेज, श्रीपति मिश्रा 2 years 15 डेज, एंड देन एनडी तिवारी, वीपी सिंह, मुलायम सिंह, वीर बहादुर सिंह, एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, फिर आपकी सरकार आती है, वन ईयर, 131 डेज आई थिंक, एंड प्रेसिडेंट्स रूल, फिर मायावती, फिर मुलायम जी, फिर मायावती, नो गवर्नमेंट मोर देन टू ईयर्स. उस देर वॉज अ रीज़न जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, 70 के दशक से लेकर फिर अखिलेश यादव तक, तब तक इतने दशक चले गए इंस्टेबिलिटी, ऐसा क्यों हुआ राजनाथ जी?
कई पॉलिटिकल पार्टीज थी, अस्थिरता का माहौल था, और एक बार तो 1991 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय तो हमारी चार की चार राज्य सरकारें जो थी इस देश में, उसको उस समय की केंद्र की सरकार ने भंग कर दिया था, अयोध्या में जो ढांचा गिरा था उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये अस्थिरता बनी रही, कोई स्थायी सरकार वहाँ पर नहीं आ पाई. लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अच्छी तरह काम कर रही है, प्रभावी भूमिका निभा रही है, और कानून और व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, और विकास भी तेजी के साथ वहाँ पर हो रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका पूरा सहयोग, और राज्य में योगी जी का नेतृत्व, इसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्तर प्रदेश सब तेजी से आगे बढ़ रहा है.
पर 80s और 90s में ऐसे हो क्यों रहा था? क्यों सरकारें बार बार गिराई जा रही थी वहां पर?
देखिए, हर स्टेट में कभी कभी इस प्रकार के फेजेज आ जाते हैं.
किस राज्य में?
उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य भी तो कोई राज्य नहीं है ना, ये भी तो विचार करिए. महाराष्ट्र में भी कुछ समय इसी प्रकार की स्थिति रही है. ऐसे ये बड़े राज्यों में कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, एक फेज चलता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आती है. अब 30-32 वर्षों का एक फेज था, वो गुजर गया,
पर इसी अब
स्थायी तो उत्तर प्रदेश में आ चुका है.
इसी राज्य से इतने प्रधानमंत्री आए, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं, फिर भी इतना बैकवर्ड था.
देखिए, प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं इसलिए स्टेबिलिटी रहेगी, यह कोई तर्क नहीं है. स्टेबल गवर्नमेंट होने के कई कारण होते हैं. जब समाज को पॉलिटिकल पार्टी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर बांटकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करती हैं, तो उस राज्य में कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है. और उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जाति, पंथ, मजहब, इसके आधार पर राजनीति करती हैं. अब स्टेबल गवर्नमेंट जब आई है, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कैसी गवर्नमेंट आई है जो जाति, पंथ और मजहब के आधार पर काम नहीं करती है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है हमारी. तो इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट है, स्थायी सरकार है, चल रही है. 2017 में भी हमको उत्तर प्रदेश की जनता का, हर जाति, हर पंथ, हर मजहब, धर्म के लोगों का हमको समर्थन प्राप्त था. और 2022 में जब चुनाव हुआ तो पहले से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, और 2027 का जब चुनाव होगा तो इससे भी ज़्यादा अधिक समर्थन उत्तर प्रदेश में हमको प्राप्त होगा.
तो क्या ये
स्टेबिलिटी आ गई उत्तर प्रदेश में?
क्या आप ये समझते हैं कि एक ट्रेंड है कि जाति बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अंत होने वाला है, खात्मा होने वाला है, क्या हो सकता है?
देखिए, मैं मानता हूं कि देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है. और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है केंद्र में, सचमुच मैं कहूं कि यह मॉडल गवर्नमेंट है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा. आपने देखा होगा 2014 का चुनाव लड़ते हुए भी, 2019 का चुनाव लड़ते हुए भी, कभी भी हम लोगों ने जाति, पंथ, मजहब यह सब सारी बातें नहीं की, अथवा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे कोई यह कह सके कि यह पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है. एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया.
उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो बुलडोजर बाबा का जो टर्म दिया जाता है कि बिना किसी जांच के लोगों के खिलाफ जो है उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, इन द सस्पिशन, बिना
कोई सस्पिशन के आधार पर किसी के घर नहीं तोड़े गए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है. सस्पिशन के आधार पर नहीं, गलत तरीके से यदि किसी ने अपना कोई घर बनवा लिया है,
पर जैसे
और किसी की जमीन पर कब्जा करके बनवा लिया है, सरकार की जमीन पर बनवा लिया गया है, जो मेरी जानकारी है.
इंक्वायरी पूरी होने से पहले ही बुलडोजर लिया जाता है और उनके घर तोड़े जाते हैं।
कहीं से रिपोर्ट आने के बाद ही यह कार्रवाई होती है, जैसी मेरी जानकारी है। ऐसे नहीं गिराया जाता, यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन से जानकारी लेते हैं,
जो अल्पसंख्यक
गांव का मामला है तो ग्राम पंचायत से उसकी जानकारी हासिल करते हैं, तहसीलदार से जानकारी हासिल करते हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही होता है।
ओवैसी साहब तो यही कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके घर तोड़े जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी और बीजेपी राज्य में हो, बिना इंक्वायरी के।
वो तो बराबर जिस प्रकार की वो पॉलिटिक्स करते हैं, ये भगवान बचाए उनको, हम लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करते
कि सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े
जाते
हैं।
प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, मुसलमान भी हमारे देश का नागरिक है। मैं कहता हूँ जैसे हमारी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं, उसका लाभ केवल हिंदुओं को मिल रहा है, क्या मुसलमान बहनों भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कहीं पर हम लोगों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है, कोई भेदभाव किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर? केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग करने की कोशिश करते हैं, इससे उनका वोट बैंक नहीं बनने वाला है। देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है,
अगर
इन हथकंडों में नहीं आने वाली है।
अगर ऐसी बात है तो
हमारे लिए हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी जो भी भारत का नागरिक है सभी समान है।
अगर सभी समान है तो आपकी पार्टी टिकट क्यों नहीं देती?
ऐसा है कि टिकट कुछ लोगों को देते भी हैं, ऐसा भी है कि एकदम नहीं देते। मैं राज्यसभा में लेकर आए हैं, भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय भी, आरिफ साहब थे, सिकंदर बख्त साहब थे, ऐसे सब सारे दिग्गज थे।
कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है?
नहीं थे, इसके पहले थे, मुख्तार अब्बास नकवी जो थे ही, लेकिन अब धीरे धीरे वो चुनकर आएंगे, वो भी बनेंगे।
और इस बार भी मुसलमान, आपकी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यही तो ओवैसी साहब कहते हैं कि कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती,
केवल वही देते हैं। इसका कांग्रेस भी नहीं देती, सोशलिस्ट भी, ये समाजवादी पार्टी कोई नहीं देता है, केवल वही देते हैं।
वही कहते हैं कि मुसलमान जो है अभी तक कोई अपनी लीडरशिप बनाया नहीं।
ये सब लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले हैं, कास्ट क्रीड की, रिलीजन की, यह सब पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। पॉलिटिक्स इंसाफ और इंसानियत की करिए, सबको साथ लेकर चलिए।
ये आपने लखनवी बात कह दी ना, गंगा जमुना तहजीब वाली,
जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, नहीं जो कहते हैं वो करते हैं। ये मतलब किसी भी इस्लाम धर्म के मानने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने किया हो, जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, हम क्यों उनको, क्या उनको सहायता नहीं देते जो हिंदुओं को देते हैं अथवा अन्य दूसरी कौमों को देते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं? अब भी लोगों की समझ में यह बात नहीं आ रही है, लगातार हमारे प्रधानमंत्री के पक्ष में बराबर परसेंटेज ऑफ समर्थन, जिसको कहा जाए समर्थन का प्रतिशत, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? उसमें मुस्लिम भी हैं जो कि समर्थन दे रहे हैं,
लाभार्थी मुस्लिम।
और आप देख लीजिएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का अच्छी खासी संख्या में वोट प्राप्त होगा।
क्यों?
उनको विश्वास है कि किसी प्रकार का भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं, यह सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है।
और जो कहते हैं कि भय है मुसलमान कौम में बीजेपी के बारे में,
नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो एक लोगों के अंदर भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब सारे लोग समाज के किसी वर्ग के अंदर भय पैदा करके समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि उनके मन के अंदर विश्वास पैदा करके हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। सेंस ऑफ फियर नहीं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करके हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं।
जब मैं राजनीति की बात और मर्यादा की बात करती हूँ, तो फिर हमारी हिस्ट्री में एक वो चैप्टर है जिसके बारे में कुछ लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि क्या हुआ था, और वो है इमरजेंसी का किस्सा। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, खासकर यंग यूथ जो है वो जानते नहीं है, वो डार्क चैप्टर के लिए। उस वक्त के बारे में आप बताइए, आप 2 साल जेल में थे, आपकी उम्र 23 साल की थी,
18 साढ़े 18
23-24 साल
की उम्र थी उसी समय मैं जेल गया था,
18 महीने के लिए,
18 महीने के लिए
जी। और उस वक्त के बारे में बताइए, आपको जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त?
मैं क्योंकि इमरजेंसी का हम लोग विरोध कर रहे थे।
आप स्टूडेंट लीडर थे?
स्टूडेंट लीडर नहीं था, मैं टीचर हो गया था, लेकिन फिर भी जेपी मूवमेंट में शामिल हुआ था। और उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसी हमको 24 साल की उम्र में ही जेपी मूवमेंट का कन्वीनर बनाया था जिले का, मिर्जापुर सोनभद्र दोनों एक जिले हुआ करते थे, उसका मैं कन्वीनर था। तो उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, इमरजेंसी का विरोध करते थे, इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है। तानाशाह प्रवृत्ति की यह परिचायक है, यह बतलाते थे लोगों को हम। और बताइए, जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं।
लेकिन जब आपको अरेस्ट किया गया तो परिवार में हलचल मच गई होगी, आप तो
कोई
टीचर
हलचल नहीं मची।
नहीं
ना, मैं नई नई शादी हुई थी और मैं घर पर ही लौटा था दिन भर काम वाम करने के बाद। आए लोग, बताया कि नीचे पुलिस फोर्स आई हुई है, आपको पूछना है। मैंने कहा बुला लो इंस्पेक्टर वगैरह, डिप्टी एस पी वगैरह को। आ गए, कह साहब आपका वारंट है। मैंने कहा बैठो आप लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ, और उन लोगों के लिए भी मैंने कह दिया चाय वगैरह की व्यवस्था करो। गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11:30 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। और तीन लोग थे, तन्हाई में रखा गया था,
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट,
सॉलिटरी सेल, लगभग 2.5 महीने तक।
बहुत मुश्किल होता होगा वहाँ पे।
कोई मुश्किल नहीं, हौसला बुलंद था। इधर से अकेले मैं नारा लगाता था, उधर से 250 लोग दूसरे कंपाउंड में थे, वो लोग उधर से रिस्पॉन्ड करते थे, और ही वो लोग नारे लगाते थे, अकेले मैं इधर से मैं बोलता था।
क्या
इमरजेंसी, इमरजेंसी के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लगता था उस समय।
तो उस साइड में कौन था आप जानते
नहीं, थे? नहीं हमारे हाँ सब हमारे उसी जिले के लोग थे जो कि इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए थे। बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज के लोग गिरफ्तार हुए थे उस समय।
और जब आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, आपके पास क्या किताब या कुछ पढ़ने के लिए अखबार आते थे, किताब आता था, क्या था, कैसे आप वक्त गुजारते थे वहाँ पर?
उस समय पुस्तक वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी। एक पीतल का तसला होता था, उसी में दाल दी जाती थी और वैसे ही हाथ हाथ पर रोटी दी जाती थी।
और
तो लेकर हम लोग कुछ दिनों तक, जब तक था मैं वहाँ सॉलिटरी सेल में, उस समय तक हम लोग खाते थे।
हाँ।
और कुछ समय के लिए हम लोग को बाहर भी निकालते थे, रात को फिर बंद कर देते थे उसमें सॉलिटरी सेल में। माने वो कंपाउंड था, उसमें और कोई नहीं था, हम तीन लोग थे, लेकिन वो लोग भी मुझसे पहले ही छूट गए थे।
पर आपको 2 साल तक क्यों रखा, मतलब लोग
वहाँ से सेंट्रल जेल नैनी मुझे ट्रांसफर कर दिया गया।
हाँ, जहाँ पे पंडित जी भी थे वहाँ पे।
मैं बहुत अच्छे स्वभाव का था इसलिए रखा।
लेकिन आपके परिवार ने तो सोचा था कि आप 1 साल में बाहर निकल आएंगे या 3 महीने में बाहर निकल आएंगे।
जब डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफर हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफ़ी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे।
और आपका, आपकी माँ का निधन हुआ?
वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया अभी, अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई, तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें। मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया
क्रियाकर्म के लिए।
ना, बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था।
क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा?
वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए।
तो फिर किसने किया था?
अपने गिरेबान पर झांक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया।
आप,
मैं नहीं पहुंच पाया,
आप मिल नहीं सके।
27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदबाई हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया।
किसने मांगा था आपके लिए रिहाई के लिए, किसी ने अपील डाली थी?
नहीं, लोगों ने कोशिश की, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी माँ को देख ले, नहीं दिया।
और जब आप बाहर आए तब?
नहीं, कुछ समय के बाद एक बार बीच में लगभग माँ की डेथ के कई महीने के बाद, शायद 14-15 दिन का किसी मुद्दे पर कोई पेरोल मिला था मुझे, लेकिन फिर तुरंत 14 दिन के बाद फिर मैं जेल चला गया था, क्योंकि आने के बाद भी मैंने कुछ इमरजेंसी के खिलाफ ही लोगों को कुछ इकट्ठा उकट्ठा करना शुरू कर दिया था, फिर से मुझे भेज दिया था। पेरोल समाप्त नहीं हुई थी, बीच में ही भेज दिया था जेल में।
उस वक्त लगा था राजनाथ जी कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये विरोध?
मैं बिल्कुल नहीं लगा था, करना चाहिए हमको। किसी भी हद तक इमरजेंसी के खिलाफ जाने का जज्बा था अपने अंदर, हताशा निराशा मेरे अंदर कभी नहीं पैदा हुई है। इसमें ताजी मैं आपको बता दूं, कभी नहीं पैदा हुई है। मैं ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों में हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हमारी पूरी आस्था परमात्मा में रहती है, ईश्वर में रहती है। कष्ट भी देता है उसे स्वीकार करता हूं, हर्ष भी देता है उसे भी स्वीकार करता हूं।
आप जेल में क्या कर रहे थे उस वक्त? कसरत कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे? आप में
इमरजेंसी जब सॉलिटरी सेल में थे तो उस समय तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उस समय भी एक वहां पर जो वो होते हैं ना कुछ कांस्टेबल्स, या उनको वार्ड बोलते हैं या
वार्डन,
वार्डन बोलते थे उस समय, वार्डन उस समय बोला जाता था, तो वार्डन होते थे। एक मुस्लिम वार्डन थे और उनको लोग कटोरा चाचा कहकर बुलाते थे। तो हाफ पैंट पहनते थे खाकी, और खाकी शर्ट पहनते थे, तो वो हमारे लिए कुछ, हमारे घर जाते थे तो कुछ अपने पॉकेट में रख कर कोई मिठाई उठाई या कुछ लेकर जो आते थे चोरी से मुझे देते थे। तो मैंने कहा कि कटोरा चचा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसको भी बंद कर दीजिए, नहीं कभी आप पकड़े जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी।
पर उसे आपकी घर की याद आ जाती होगी?
ना नहीं, घर की याद क्या, जब कुछ करने निकले थे तो निकले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर के चाहे हमारी पत्नी हो, माता हो, सबका हौसला बुलंद था, मैंने कोई इस प्रकार का नहीं रहा। हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो कभी मैंने उन्होंने तो पेंशन तक नहीं ली हुई।
Now we begin with our new segment, the sugar-free conversation, where we keep the questions interesting and the answers sugar-free.
अंत में दो सवाल हैं जो जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं वो पूछना चाहते हैं कि आप, प्रधानमंत्री ने योगा और फिटनेस के बारे में कहा है, आप
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को मान्यता दिलाई है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था मोदी जी ने, 172 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और योगा ये भारत की देन है, भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। आज विश्व के अधिकांश देशों में योगा की लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह तो हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है।
आपके बिजी शेड्यूल में योगा, फिटनेस, ये कहाँ पे फिट?
मैं तो करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, टहलना और योगा करना, यह और पूजा करना।
सुबह करते हैं पूजा?
बिल्कुल, स्नान करने के बाद और करने के बाद मैं करता ही हूँ।
मंदिर में जाके करते हैं?
हमारे यहाँ मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, मैं अपनी मंदिर में पूजा करता हूँ, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत लोग संकोच करते हैं, हमारे ईश्वर में आस्था है, आस्था नहीं गहरी आस्था है।
आजकल बहुत स्ट्रेस है बच्चों को भी, और जो युवक हैं वो जब फैमिली प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, इन सब का जब प्रेशर झेलने के लिए मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों पर दे शुड कॉन्सेंट्रेट मोर, ये कहते हैं लोग, तो वुड यू अग्री विद दैट?
नहीं, पहले अपनी थिंकिंग भी बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी ना। क्यों स्ट्रेस लेते हैं इतना ज़्यादा? ऊपर वाले पर भी तो भरोसा करें, जो सही रास्ता है उस सही रास्ते पर आगे बढ़ें, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें, और यदि कोई जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएं, उस चुनौती पर विजय प्राप्त करें, यह संकल्प होना चाहिए।
आपके दिनचर्या में खाने का क्या रोल होता है, जब आप खाते क्या हैं और उस पर क्या आपका ध्यान होता है कि मुझे ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए?
थोड़ा सावधानी से बरतता हूँ मैं,
हाँ, जैसे सात्विक भोजन या फिर
जो भी खाना हो खाइए, लेकिन ज्यादा मत खाइए, जितनी भूख लगे उससे कम खाइए,
क्योंकि आपका शेड्यूल
बार बार मत खाइए।
शेड्यूल देखिए, आप सुबह आप तमिलनाडु में थे, दोपहर तक आप अरुणाचल में हैं, रात को आप दिल्ली आ रहे हैं,
फिर कल आप रात को
वो भी रात को इंटरव्यू, और इसके बाद आप फिर कैंपेन पर निकलेंगे, तो इसमें डाइट उल्टा सीधा नहीं हो जाता?
नहीं नहीं नहीं, सब सीधा रखता हूँ मैं, बिल्कुल।
घर का खाना जाता है आपका हर जगह?
लेकर जाता हूँ,
लेकर
जाता हूँ, लेकिन कभी 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 बाहर भी खाना खा लेता हूँ। रात को यदि कहीं रुकना हुआ तो जहाँ रुकते हैं वहीं खाना खाते हैं
जी। अच्छा, धन्यवाद राजनाथ जी, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई। आपको विशिंग यू ऑल द बेस्ट इस इलेक्शंस के लिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। Thank you for watching and listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Click on the subscribe button and share this conversation with people who you think will benefit from listening to them. Namaste, Jai Hind.